Rebecca. मैंने रेबेका को गोली मार कर ख़त्म कर दिया और वो समंदर के गहरे पानी में हमेशा हमेशा के लिए डूब गई। आपने जब भी रेबेका का नाम लिया, मैं समझी उसकी मोहब्बत आपके दिल में मौजूद है। मेंडले की खूबसूरत इमारत में दफन मोहब्बत और नफरत की पुरिसरार दास्तान। रेबेका बाय डेफनी डुमारिये। तहरीर और पेशकश सैयद इरफान अली .com। कल रात ख्वाब में दोबारा मैंने अपने आप को मेंडले में घूमते हुए देखा। इमारत के बाहर लोहे के दरवाजे बंद थे। मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए कहा, चौकीदार की तरफ से कोई जवाब ना आया। वो शायद वहाँ मौजूद ही ना था, शायद कोई शख्स भी वहाँ मुकीम ना था। ना किसी इंसान की आवाज़ आती थी, ना चिमनी से धुआं उठ रहा था। फिर ख्वाब में मैंने महसूस किया कि किसी रूह की तरह बंद दरवाज़ा पार कर गई हूँ। इमारत की तरफ जाती सड़क वही थी, मगर बहुत मुख्तलिफ लग रही थी। सड़क पर झाड़ियों और दरख्तों ने अपना बसेरा कर लिया था और रास्ते को मज़ीद पुरिसरार बना रहे थे। मेंडले में क्या कोई भी ना था जो उसकी देखभाल करता और इन दरख्तों को काट कर रास्ता साफ करता और इन हैबतनाक झाड़ियों को वहाँ से हटाता। ख्वाब में वो मुख्तसर रास्ता कितना तवील लग रहा था। कभी लगता रास्ता भूल चुकी हूँ, फिर मेंडले की इमारत नज़र आ जाती। दिल परेशान था, तेज़ी से धड़क रहा था और आँखों में आंसू। फिर चांद की रोशनी में नहाई हुई वो इमारत मेरे सामने मौजूद थी। खामोश पुरिसरार हमारा मेंडले, वक्त उसे तब्दील ना कर सका था। जब उस ख्वाब से जागी तो याद आया कि मैं तो मेंडले से सैकड़ों मील दूर एक होटल में मौजूद हूँ अपने शोहर के साथ। मैं इस ख्वाब का तस्करा अपने शोहर से नहीं कर सकती, मगर यह हकीकत थी कि चाहने के बावजूद मेंडले और रेबेका की यादें अब भी मेरा पीछा कर रही थीं। अगरचे मेंडले नामी इमारत को बहुत पहले बुराई की ताकतें बर्बाद कर चुकी थीं, मगर 20 साल के तवील अरसे के बाद भी हम दोबारा इंग्लैंड नहीं जा सकते थे। अपने माजी को भूलना चाहते थे, मगर लगता था कि ये कल की ही बात है। माजी खौफ और दहशत से भरा हुआ हो तो हम चाहते हैं कि उसे फरामोश कर दें, मगर ये मुमकिन नहीं होता। अपने मुल्क से दूर होटलों में ज़िंदगी बसर करने से इंसान बोरियत महसूस करता है, मगर इस बोरियत की वजह से हमारे खौफ में कमी भी तो वाक़ा होती है। वतन से दूर हों तो उसकी याद और ज़्यादा सताती है। वक्त ने मुझे किस कदर तब्दील कर दिया है। कहाँ वो मासूम भोली भाली शर्माई हुई लड़की और कहाँ एक मजबूत इरादे की औरत। जब मैं अपने शोहर को चुपचाप सोचों में गुम देखती हूँ तो इल्म हो जाता है कि वो माजी की यादों में गुम है। हम दोनों के दुख तकलीफ़ें, डर खौफ और तन्हाई सब कुछ मुश्तरका हैं, क्योंकि हम दोनों का माजी मुश्तरका है। मैं कम उम्र लड़की थी, माँ बाप मर चुके थे, तो मिसेस वैन होपर के साथ रहने लगी। बड़ी उम्र की मोटी ताज़ी नहायत अमीर मगर घटिया ज़हनियत की औरत। अमीर लोगों से ताल्लुकात बनाने का उसे बेहद शौक़ था। थोड़ी सी तनख्वाह में मैं उसके साथ सफ़र करती और उसकी नाकाबले बर्दाश्त आदात को भी बर्दाश्त करती। इस वक्त वो मोंटी कार्लो के आलीशान होटल में मुकीम थी, मगर शदीद बोरियत महसूस करते हुए। कोई भी आला ख़ानदान का शनासा वहाँ मुकीम ना था, ये बात मिसेस वैन होपर के लिए तकलीफ़ दे थी। उसकी आदत थी कि जब भी किसी अमीर आदमी को देखती तो किसी ना किसी तरह उससे ताल्लुकात बनाने और करीब होने की कोशिश करती। मैं उसके साथ रहती, ना उसकी दोस्त थी ना साथी, बस मुलाजिम किस्म की चीज़। जिसे हमेशा उसके साथ रहना था और हाँ में हाँ मिलानी थी। फिर एक दिन उसे होटल में कहीं दूर का शनासा नजर आ गया, मिस्टर डिविंटर। बहुत पहले किसी शादी में वो उनसे मिली थी, मगर ऐसे तस्करा किया जैसे बरसों से जानती हो। उसे बातों में लगाया और उसके घर मेंडले की तारीफें की, उसे अपने साथ खाने की दावत दी। मिस्टर डिविंटर संजीदा इंसान लग रहे थे। जल्द ही मिसिस वैन हॉपर का शुक्रिया अदा करके चले गए, मगर बाद में मुझे कागज़ पर पैगाम भिजवाया कि अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मिसिस वैन हॉपर पर नज़ला ज़ुकाम का शदीद हमला हुआ और 10 दिन के लिए उन्हें बिस्तर पर आराम की ताकीद की गई। एक नर्स भी उनकी तीमारदारी के लिए मंगवा ली गई। चुनाचे चंद दिन के लिए मुझे भी आराम नसीब हुआ। अकेलेपन का शदीद एहसास था। होटल में खाना खाने के लिए गई तो मेज़ पर रखा गुलदान गिरा, पानी तमाम मेज़ पर फैल गया और उसी वक्त मिस्टर डिविंटर मेरी मेज़ पर मौजूद थे। गीली मेज़ पर बैठना अकलमंदी नहीं, फौरन उठें और मेरी मेज़ पर आ जाएं। कुछ हिचकिचाहट के बाद मैं उनकी मेज़ पर चली गई। उन्हें बताया कि मैं मिसिज़ वैन हॉपर की सहेली नहीं मुलाजिम हूँ। मिस्टर डिविंटर का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था, इसीलिए मैंने उन्हें अपने माँ बाप के बारे में बताया जो अब इस दुनिया में नहीं थे। काफ़ी देर हम बातें करते रहे। वो बोले, कम अज़ कम एक बात हम दोनों में मुश्तरक है, अकेलापन। मैंने फौरन कहा, मगर आपका तो खूबसूरत घर है मेंडले। वो बोले, घर नहीं खाली घर। मेरा ख्याल था कि पेंटिंग करूंगी, तो उन्होंने कहा आप मेरे साथ जा सकती हैं। उनके साथ वक्त बहुत अच्छा और तेज़ी से गुजरा। मैं बहुत अरसे बाद खुलकर हंसी, वो भी खुश मिजाज इंसान थे। हाँ, सैर के दौरान एक जगह वो अपनी पुरानी यादों में खो गए। वो पहले भी उस जगह आए थे और देखना चाहते थे कि वो जगह कितनी तब्दील हुई है। वापसी पर देर तक मेंडले के बारे में बताते रहे। वहाँ की सुबहें, शामें, मौसम, फूलों के बाग। होटल पहुंचकर उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया, अपनी शायरी की डायरी भी मुझे पढ़ने के लिए दी। मैं भी चाहती थी कि उनकी कोई निशानी मेरे पास मौजूद हो। उनके जाने के बाद मिसिज़ वैन हॉपर के ख्याल से बचने के लिए मैंने उनकी शायरी की डायरी पढ़नी शुरू की। मैं महसूस कर रही थी कि मेरे साथ गुजारे हुए वक्त में वो किन यादों में गुम थे। वजह डायरी में लिखे गए अल्फाज थे, रबैका की तरफ से मैक्स के लिए। हाँ, ये वही रबैका थी जिसकी अचानक मौत की वजह से मिस्टर डिविंटर अब तक परेशान थे। उसकी मोहब्बत उनके साथ शायद अब भी थी, इसीलिए तो वो अब भी उसके बारे में गुफ्तगू नहीं करते थे। जिससे मोहब्बत की जाए वो पानी में डूबकर मर जाए तो भूलना इतना आसान नहीं होता। मुझे एहसास हो रहा था कि मिस्टर डिविंटर से मुझे मोहब्बत हो रही है। मेरी उम्र 20 साल से ज़रा ही ज़्यादा होगी। मिसिस वैन हॉपर को मैंने इस बारे में कुछ ना बताया। मिस्टर डिविंटर के साथ सैर करना, बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। अगली मर्तबा मैंने सैर के दौरान उनसे पूछा, आपने मेरे बारे में तो पूछ लिया, अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। आपके बारे में सिर्फ इतना जानती हूँ कि आप मेंडले में रहते हैं और बीवी मर चुकी है। बीवी के जिक्र से अचानक उनका चेहरा बिल्कुल तब्दील हो गया और बोले, मैं अपने माजी को भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके साथ मैं कुछ देर के लिए अपने माजी से बाहर आ जाता हूँ। मैं रो रही थी। उन्होंने मुझे प्यार किया और कहा, मुझे मेरे दोस्त मैक्सिम कहते हैं, आप भी इस नाम से बुला सकती हैं। मेरी हंसी निकल गई, उन्होंने भी कहकहा लगाया। होटल में मिसिस वैन हॉपर ने जब मिस्टर डिविंटर के बारे में पूछा तो मैं घबरा गई कि किसी ने उनसे शिकायत तो नहीं कर दी। मगर वो कहने लगी कि अजीब इंसान है, मुझे मेंडले की दावत भी नहीं दी। उसकी बीवी बेहद हसीन और अक्लमंद थी। शानदार पार्टियां उसके दौर में मेंडले में दी जाती थीं। मैं सोच रही थी वो डिविंटर को मैक्स कहती थी और मैं मैक्सिम। फिर अचानक मिसिस वैन हॉपर को इतला मिली कि उनकी बेटी बीमार है, ऑपरेशन होना है। वो तो पहले ही इस शहर से बोरियत महसूस कर रही थी। मौका मिल गया कि फौरन न्यूयॉर्क चली जाएं। मुझसे पूछा, न्यूयॉर्क चलोगी? میرے چہرے کے تاثرات پڑھ کر غصہ کرنے لگیں۔ خوب سنایا اور حکم دیا کہ نیو یارک چلنے کی فوری تیاری کروں۔ میں پریشان تھی اور چاہتی تھی کہ جانے سے پہلے مسٹر ڈی ونٹر کی مہربانی اور اچھے سلوک کا شکریہ ادا کر دوں۔ دراصل میں ان سے محبت بھی کر رہی تھی۔ واپسی کی تیاری کے دوران بار بار مسٹر ڈی ونٹر کا معلوم کیا، مگر وہ ہوٹل نہ آئے۔ رات کو اپنی حالت پر خوب روئی۔ ان کے کمرے کا علم تھا، جانے سے پہلے آخری مرتبہ وہاں گئی، انہوں نے اندر آنے کا کہا۔ میں نے انہیں نیو یارک جانے کا بتایا۔ وہ ناشتہ کر رہے تھے، رکے اور بولے، تم مسز وین ہوپر کے ساتھ نیو یارک جاؤ گی یا میرے ساتھ مینڈلے چلو گی؟ میرے لیے یہ الفاظ حیرت انگیز تھے۔ کیا آپ کو بھی سیکٹری کی ضرورت ہے؟ نہیں، مجھے بیوی کی ضرورت ہے۔ بے وقوف، میں تم سے شادی کا کہہ رہا ہوں۔ میں حیران تھی، پریشان تھی۔ میں آپ سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ میں امیر نہیں، نہ امیروں کی طرح رہنا جانتی ہوں، کہاں مینڈلے کہاں میں۔ وہ بولے، میرا خیال تھا تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ ہاں یہ درست ہے، آپ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ میں تو تمام رات روتی رہی کہ آپ سے دوبارہ ملاقات نہیں کر سکوں گی۔ تو پھر فیصلہ ہو گیا، نیو یارک نہیں مینڈلے، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ ہنی مون کے لیے وینس کے خوبصورت شہر میں چلیں گے، پھر مینڈلے۔ اچھا، اب یہ خبر سنانے کے لیے مسز وین ہاپر کے پاس چلنا چاہیے۔ مسٹر ڈی ونٹر نے اپنی شادی کے بارے میں انہیں بتایا۔ وہ حیران پریشان کھڑی تھیں، یہ نہ جانتے ہوئے کہ غصے کا اظہار کیسے کریں۔ پھر مصنوعی مبارکباد دی، بعد میں مجھے سنانے لگیں کہ میں نے یہ اچھی حرکت نہیں کی، نہ وہ بیمار ہوتی نہ یہ شادی طے ہوتی۔ پھر کہنے لگیں کہ میں غلطی کر رہی ہوں، مینڈلے کو میں سنبھال نہیں سکوں گی۔ وہ تم سے اس لیے شادی نہیں کر رہا ہے کہ اسے تم سے محبت ہو گئی ہے، بلکہ مینڈلے میں جو اکیلے پن کا، تنہائی کا احساس اسے ہوتا ہے، اسے ختم کرے اس لیے تم سے شادی کر رہا ہے۔ مجھے ان کی باتوں کی اب کوئی پرواہ نہ تھی۔ ڈی ونٹر کی ڈائری سے ریبیکا کی طرف سے میکس کے لیے الفاظ میں پہلے ہی پھاڑ کر جلا چکی تھی، اور اب مجھے خوشی تھی کہ اس مطلبی عورت سے میرا تعلق ختم ہو چکا ہے، اور آج اس کے تانے آخری مرتبہ سن رہی ہوں۔ ہماری شادی ہو چکی تھی اور لندن سے مینڈلے کی طرف جا رہے تھے۔ بارش ہو رہی تھی، میں نئے گھر کی طرف ایسے جا رہی تھی جیسے بچہ پہلے دن اسکول جاتے ہوئے پریشان ہوتا ہے۔ کپڑوں سے دلہن بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ میکسم نے کہا، لڑکیاں تو کپڑوں کی طرف بہت دھیان دیتی ہیں، تم ایسا کیوں نہیں کرتی؟ بس ایسے ہی، زیادہ شوق نہیں۔ پھر مینڈلے آ گیا۔ ڈی ونٹر نے کہا، وہاں بہت سے لوگ تمہیں دیکھنا چاہیں گے، انہیں تمہارے بارے میں تجسس ہوگا، مگر بالکل پریشان نہ ہونا۔ مینڈلے کی دیکھ بھال مسز ڈینورس کے ذمے ہے، وہ سارے کام سنبھال لے گی۔ مگر یہ کیا، مسز ڈینورس نے تمام ملازمین کو ہمارے استقبال کے لیے ہال میں جمع کیا ہوا تھا، یہ میرے لیے مشکل مرحلہ تھا۔ اب ان تمام لوگوں کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ تمام لوگوں کی نگاہیں میرے اوپر جمی ہوئی تھیں اور میں حیران پریشان کھڑی تھی۔ لمبے قد اور کالے لباس میں ملبوس ایک خشک قسم کی عورت آگے بڑھی، یہ مسز ڈینورس تھی۔ میں نے اس کے احترام میں ہاتھ آگے کیا، مگر یہ کیا، اس کے ہاتھ کس قدر ٹھنڈے تھے۔ اس نے ہمیں خوش آمدید کہا، مگر روکھے لہجے میں۔ گھبراہٹ میں میرا ایک دستانہ زمین پر گر گیا، اس نے اٹھایا اور طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ شاید وہ جان چکی تھی کہ میں امیر نہیں ہوں اور یہ ماحول میرے لیے نیا اور اجنبی ہے۔ میکسم نے رہائش کے لیے عمارت کی اس طرف رہنے کی خواہش ظاہر کی تھی جہاں سے گلاب کے پھولوں کے باغ نظر آتے تھے۔ ریبیکا کے زمانے میں وہ اس طرف رہتا تھا جہاں سے سمندر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ میں نے ڈینورس سے درخواست کی کہ وہ میرا ساتھ دے تاکہ میں اس ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کر سکوں، مگر اس کی باتوں سے واضح ہو رہا تھا کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتی۔ हर बात में पुरानी मालकन रिबेका का हवाला देती। यकीनन उसका मकसद था कि मुझे मेरी कम हैसियत और रिबेका की बर्तरी का एहसास दिलाए। जिस तरह उसके हाथ सर्द थे मौत की तरह सर्द, उसी तरह उसके बात करने का अंदाज और रवैया भी सर्द था। मैंने उसकी बातों को नज़रअंदाज करके उसके काम की तारीफ़ की और उसका शुक्रिया अदा किया। घर में बेशुमार कमरे थे, रिबेका के ज़ाती कमरे में भी गई, शानदार कमरा बेहतरीन अशिया, मगर मैं हर बात पर परेशान हो रही थी। कमरे में बैठी, टेलीफोन की घंटी बजी और किसी ने मिसिस डिविंटर का पूछा। मुझे कहना चाहिए था बोल रही हूँ, मगर कहा कि उन्हें तो फौत हुए साल का अरसा गुजर चुका है। मगर दरअसल ये घर के अंदर से मिसिस डैनवस का फ़ोन था जो पूछना चाहती थी कि आज के खाने की लिस्ट मेज़ पर मौजूद है, क्या वो दुरुस्त है। दरअसल यहाँ भी वो रिबेका की बर्तरी का एहसास दिलाना चाहती थी कि रिबेका इस चीज़ में भी मुझसे बर्तर थी। मैक्सिम की बहन बियट्रिस और उसके शोहर मिस्टर गाइल्स मुझसे मिलने आए। मैं उनसे मिलने से परेशान थी, वो बहुत अच्छे तरीके से मिले। बियट्रिस साफ गो औरत थी, मुझसे कहा कि जैसा उसने तसव्वुर किया था मैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हूँ, रिबेका से भी बिल्कुल मुख्तलिफ। मैंने ये बात मैक्सिम को बताई कि उनकी बहन के तसव्वुर में मुझसे बहुत बेहतर औरत थी। अलबत्ता जाने के बाद उन्होंने मुझे तस्वीरों का तोहफा भिजवाया। मैक्सिम और मैं सैर के लिए बाहर गए। समंदर के किनारे हमारा कुत्ता जैस्पर एक जानिब भाग गया। मैं मैक्सिम के रोकने के बावजूद उसे ढूंढने गई। वो भागता हुआ एक कश्ती में बनाए हुए घर तक पहुंच गया जहां एक आदमी मुझे नज़र आया। बेवकूफ़ लग रहा था, घबराया हुआ। कमरे में अलमारियाँ बनी हुई थीं जहाँ किताबें भी मौजूद थीं और ज़िंदगी गुजारने का दीगर सामान भी। लगता था यहाँ पहले कोई रहता था। जब वापस मैक्सिम के पास पहुँची तो गुस्से में लग रहा था। बोला, मुझे उस कमरे को ताला लगवाना पड़ेगा, और जब मैंने तुम्हें मना किया तो फिर क्यों वहाँ गई। मैं समझ गई कि किसी वजह से वो वहाँ जाने से गुरेजा था। उसका गुस्सा ज़रूरत से ज़्यादा था, न जाने क्या वजह थी। मैं चाहती थी कि नए घर में कोई गलती ना करूँ, मगर एक क्यूपिड खूबसूरत मुजस्मा, मोहब्बत के देवता का छोटा सा मुजस्मा मेरे हाथों से गिरा और टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया। मैंने घबरा कर उसे इकट्ठा किया, लिफाफे में डाल कर दराज में छुपा दिया। मगर फिर डिविंटर ने उसको तलाश किया और एक मुलाजिम पर चोरी का इल्ज़ाम लग गया। मैंने तमाम बात डिविंटर को बता दी, जिसने मिसिस डैनवर्स को बुलाकर कहा मुलाजिम ने वो नहीं चुराया बल्कि मुझसे गिरकर टूट गया। मिसिस डैनवर्स मुझे फिर शिकस्त दे चुकी थी और मेरी घबराहट पर खुश थी। मैक्सिम भी समझ गया था कि मुझे यहाँ एडजस्ट होने में मुश्किल पेश आ रही है, मगर फिर भी मुझे खुश करने की कोशिश करता। मैं महसूस कर रही थी कि मैंडले में हर तरफ रिबेका की यादें मौजूद हैं। कभी मिसिस डैनवर्स मुझे इस बात का एहसास दिलाती तो कभी मैक्सिम, जिसे इस मोहब्बत के खूबसूरत मुजस्मे के टूटने का बेहद दुख पहुंचा था क्योंकि वो उसे रिबेका ने तोहफे में दिया था। कभी किसी कुर्सी पर बैठकर एहसास होता कि ये तो रिबेका की कुर्सी है, और कभी वो मेरी तरह इस पर बैठती थी। मुलाजमों के हंसने की आवाज़ सुनकर महसूस होता कि मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। लोग मुलाकात के लिए आते, मगर मेरी ख्वाहिश होती कि अगरचे मौसम ख़राब है फिर भी समंदर और हादसात के मुतालिक गुफ्तगू ना हो, क्योंकि ये रिबेका तक जा पहुँचेगी। मगर लोग बातें करते तो रिबेका की अकलमंदी, उसकी पार्टियाँ उन्हें याद आ ही जाती। मुझे एहसास कमतरी का एहसास होता और महसूस करती कि ये लोग जाने के बाद मेरे ऊपर हंसते होंगे कि कहाँ रिबेका और कहाँ ये, न जाने मैक्सिम ने इससे शादी क्यों की। मैं सोचती न जाने ये लोग क्यों यहाँ आते हैं, शायद रिबेका की तारीफ़ें करने से इन्हें मुसरत हासिल होती है। मुझसे कहा जाता रिबेका के दौर में मैंडले में शानदार पार्टियाँ दी जाती थी, मैं कब दूंगी। कश्ती में बनाया गया वो कमरा जहाँ मुझे पालतू कुत्ता जैस्पर ले गया था रिबेका का ही था, जहाँ वो चांदनी रातें गुजारती। जिस रात वो समंदर में डूबी पहले उस कमरे में मौजूद थी जहाँ उसकी किताबें और सामान अब भी मौजूद था। 2 माह बाद उसकी लाश मिली। डी विंटर ने उसकी शिनाख्त की। रबेका हर जगह मुझे एहसास दिला रही थी कि वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत, अक्लमंद, दौलतमंद और खुदातमाद थी। एक मुलाजिम ने मुझे दिलासा दिया कि मेरी रहम दिली और सच्चाई की डी विंटर बहुत कदर करता है, मगर जब मैंने उससे पूछा कि क्या वाकई रबेका बहुत ही खूबसूरत थी, तो उसने कुछ हिचकिचाहट के बाद जवाब दिया, बेहद खूबसूरत, बल्कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत। मेरी ख्वाहिश थी कि डी विंटर को खुशियाँ दूँ, मगर जिस घर में ख़ुद को मेहमान महसूस कर रही थी, वहाँ किसी को क्या खुशियाँ देती। मेरे लिए एक नई मुलाजमा क्लैरिस का इंतज़ाम किया गया, मुझे यकीनन उसकी बहुत ज़रूरत थी। चंद दिन के लिए मैक्सिम लंदन गया तो मुझे अकेलेपन का शदीद एहसास हुआ। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा। मैं पालतू कुत्ते जैस्पर के साथ सैर करने गई। कश्ती में बनाए हुए कमरे के अंदर जैस्पर गया तो मुझे भी अंदर जाना पड़ा। वहाँ वही बेवकूफ़ शख्स मौजूद था। मुझे देखकर कहने लगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मुझे पागल खाने ना भिजवाएं। मैंने कहा, नहीं, तुम्हें कोई वहाँ नहीं भिजवाएगा। तो मुझे तोहफे के तौर पर एक पत्थर दिया और कहा कि आपकी फरिश्तों जैसी आँखें हैं, उसकी ऐसी ना थीं, वो तो खौफनाक लगती थी, सांप की तरह। मुझे कहने लगी, अगर मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो पागलखाने भिजवा दूंगी। वो जा चुकी है ना, वापस तो नहीं आएगी। मैंने कहा, मालूम नहीं बेन, तुम क्या बातें कर रहे हो, किसके मुतालिक बोल रहे हो। वो वाकई पागल था, बेज़रर पागल। वापसी पर एक गाड़ी नजर आई जिसे छुपा दिया गया था ताकि घर वाले ना देख सकें, शानदार स्पोर्ट्स कार। फिर घर की खिड़की में एक आदमी नज़र आया, मुझे देखते ही खिड़की बंद कर दी गई। मैं घर आई तो वो आदमी और मिसेस डैनवर्स बातें कर रहे थे, मुझे देखकर घबरा गए। आदमी सेहतमंद और खूबसूरत था। पहले मुझे देखकर घबरा गया, फिर मुस्कुराकर बोला, मैं मिसेस डैनवर्स से मिलने आया था, वो मेरी दोस्त हैं। मैक्स कहाँ हैं? लंदन, दुल्हन को अकेला छोड़ गए। ये फॉरवेल था। मिसेस डैनवर्स ने उसे जाने का इशारा किया तो वो मुझसे कहने लगा, आए आपको अपनी शानदार स्पोर्ट्स कार दिखाऊं। मैं उसे बाहर छोड़ने आई तो बोला, मैक्स से मेरे आने का जिक्र ना करें, वरना वो मिसेस डैनवर्स से नाराज़ हो जाएगा, वो मुझसे मिलना पसंद नहीं करता। मैं सोच रही थी कि कहीं मिसेस डैनवर्स उससे मिलकर कोई साजिश तो नहीं कर रही। वो मैक्स क्यों कह रहा था? ये नाम तो सिर्फ रबेका इस्तेमाल करती थी। कहीं ये शख्स चोरी के लिए तो नहीं आया था? मैं फौरन उस कमरे की तरफ गई जहाँ रबेका रहती थी। दरवाज़ा खोला, मगर ये क्या? जहन में था कि वहाँ चीज़ों पर गर्दोगुबार होगा, मगर यहाँ तो हर चीज़ साफ़ सुथरी मौजूद थी। बिस्तर पर बेहतरीन चादर, गुलदान में फूल, कंघे, ब्रश, ड्रेसिंग गाउन्स, अलमारी खोली जो कपड़ों से भरी हुई थी। रबेका के परफ्यूम की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। लगता था अभी रबेका वहाँ आएगी और शीशे के सामने खड़ी हो जाएगी। फिर मिसेस डैनवर्स वहाँ आ गई। उसके चेहरे पर फतह के तासुरात साफ नज़र आ रहे थे। मिस, आप मुझसे कहती तो मैं ये कमरा आपको दिखाती। मैं वहाँ से भाग जाना चाहती थी, मगर उसने मेरा हाथ पकड़ कर कहा, आए मैं आपको कमरे की चीज़ें दिखाती हूँ। ये देखें, ये उनका गाउन है। कितना लंबा कद था उनका, किस कदर खूबसूरत थी वो। ये उनके ब्रश हैं जो वो खूबसूरत बालों पर फेरती थीं। कभी मैं उन हसीन खूबसूरत बालों को संवारती और कभी खुद मिस्टर डी विंटर उन बालों को संवारते। वो उस वक्त कितनी खूबसूरत लगती थीं, कितना खुश होती, किस कदर हंसती थीं। उसने कपड़ों की अलमारियां खोलनी शुरू की। किस कदर हसीन कपड़े वहाँ मौजूद थे। जो कपड़ा भी वो पहनती उन पर सज जाता, मगर फिर वो मर गईं। उन्हें डी विंटर ने पहचाना, मगर उस वक्त उनके दोनों हाथ गायब थे, चेहरा भी शनाख्त के काबिल ना था। मिसेस डैनवर्स मेरे चेहरे को गौर से देखते हुए बोले जा रही थी। मैं घर में मौजूद ना थी, इसलिए उन्हें बाहर जाने से ना रोक सकी। वो मेरा कहना मानती थी। काश मैं उस वक्त घर में होती। मिस्टर डी विंटर दोस्त से मिलने गए हुए थे, वो रात को ना आईं तो लगा कि रात कश्ती में गुजारेंगी। सुबह जागी, कश्ती वहाँ मौजूद ना थी। फिर वो कभी ना आई, मगर उनका कमरा रोज़ाना साफ करती हूँ, हर चीज़ उनका इंतज़ार कर रही है। मिस्टर डी विंटर ने भी इसीलिए इस जगह ना रहने का फ़ैसला किया। मैं अभी भी उन्हें करीब महसूस कर रही हूँ। आप भी महसूस कर रही हैं ना कि वो हमारे करीब हैं, शायद वो हमें देख भी रही हैं, और अगर वो दोबारा आ गई तो आपको और डिवेंटर को देखकर क्या महसूस करेंगी। मैं कमरे से बाहर निकली, अपने कमरे में आई और आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट गई। मेरे दिलो दिमाग की जो हालत थी वो बयान से बाहर है, लगता था अभी जान निकल जाएगी। मैक्सिम की बहन बैटरीज मुझे अपने साथ ले गई। हमारी मंजिल मैक्सिम की दादी से मुलाकात थी, वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, नज़र भी कम आता था। मुझे करीब बुलाया, बातें करती रहीं, फिर बोली, तुम कौन हो, रिबेका कहाँ है? वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। बियाट्रिस ने बताया भी कि मेरी मैक्सिम से शादी हो चुकी है, मगर वो रिबेका की तारीफ़ें करती रहीं। मेरे दिमाग में तूफान बरपा था, लोगों का इसरार बढ़ता जा रहा था कि मैंडले में डांस पार्टी होनी चाहिए, शादी की खुशी मनाने के लिए भी ये एक अच्छा मौका था। पार्टी की तैयारियां शुरू हो गईं। मैं अपने लिबास के मुतालिक फ़िक्रमंद थी। मिसेस डैनवर्स ने इस मौके पर एक और ख़तरनाक चाल चली, मुझसे कहा कि गैलरी में जो तस्वीर मौजूद हैं मैं उनमें से किसी एक की तरह का लिबास पहनकर पार्टी का लुत्फ दुबाला कर सकती हूँ। मैंने सोचा कि यह ख्याल तो पहले मुझे आना चाहिए था, शानदार ख्याल था। मैंने मिसेस डैनवर्स के कहने के मुताबिक तस्वीर में मौजूद एक खूबसूरत खातून की तरह का सफ़ेद लिबास तैयार करवाने का फ़ैसला किया और मैक्सिम को भी बता दिया कि पार्टी के दिन उसे सरप्राइज़ दिया जाएगा। बिल्कुल उसी खातून की तरह का लिबास और दीगर अशिया तैयार करवाईं और फिर पार्टी का दिन आ गया। सब लोगों ने मुझसे लिबास के बारे में पूछने की कोशिश की, मगर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। छुप कर तैयारी की और कहा कि जब मैं ऊपर से नीचे उतरने लगूं तो ड्रम बजाकर ऐलान किया जाए कि कैरोलाइन डेविंटर तशरीफ ला रही हैं। ड्रम बजा, ऐलान किया गया। मैंने कदम आगे बढ़ाया, सोच रही थी कि सब हैरान हो जाएंगे, तालियां बजेंगी, मगर ये क्या, सब हैरान परेशान खड़े मुझे देख रहे थे। कुछ गलत हो चुका था। मैक्सिम की हालत सबसे ख़राब थी, चेहरे पर अजीबोगरीब भयानक तासुरात। तमाम लोग हैरान थे, बुत बने मुझे खौफजदा और परेशान नज़रों से देखे जा रहे थे। फिर गुस्से में भरे हुए मैक्सिम ने चीखते हुए कहा, तुम क्या समझ रही हो कि ये मजाक का वक्त है? मैंने घबराए हुए लहजे में कहा, क्या हुआ, मैं तो सिर्फ तस्वीर में मौजूद लड़की की तरह लगना चाहती थी। मैक्सिम बोला, फौरन वापस जाओ और कपड़े तब्दील करो, कोई भी कपड़े पहन लो मगर ये तब्दील करो, फौरन जाओ किसी भी मेहमान के आने से पहले। मैंने इतनी मोहब्बत से लिबास तैयार करवाया, मगर सबको परेशान देखकर मैं रोने लगी और भागते हुए वापस अपने कमरे में चली गई। कमरे के बाहर मिसेस डैनवर्स मौजूद थी। कुछ देर पहले मुझे नहीं मालूम था कि मैक्सिम क्यों गुस्से में है, मगर दरवाजे में मौजूद मिसेस डैनवर्स की मुस्कुराहट से जान चुकी थी कि उसकी एक और साजिश कामयाब हो चुकी है। कमरे में देर तक रोती रही, फिर मालूम हुआ कि रिबेका ने आखिरी पार्टी में ऐसा ही लिबास पहना था और उस तस्वीर की लड़की के मुताबिक अपने आप को तैयार किया था। बैट्रिस के इसरार पर बहुत मुश्किल से मैं दोबारा पार्टी में जाने के लिए तैयार हुई। बाद में मिसेस डैनवर्स से बात हुई, मगर वो अपनी गलती मानने के बजाय कहने लगी कि मैं रिबेका की जगह कभी नहीं ले सकती। उसने मुझे सिर्फ इसलिए वो लिबास पहनने के लिए तैयार किया कि मैं और मैक्सिम को जहनी तकलीफ दे। हम दोनों की गलती शादी करना थी, जो मिसेस डैनवर्स को मंजूर नहीं था। वो हकीकत में रिबेका को चाहती थी, मगर उसकी बातों से मुझे गुस्सा चढ़ने लगा था। वो कह रही थी कि रिबेका अब भी इस घर की मालकन है और मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए या फिर समंदर में छलांग लगाकर खुदकशी कर लेनी चाहिए, इससे मेरी तकालीफ का खात्मा हो जाएगा। एक जहाज रास्ता भूलकर मैंडले की तरफ आ गया। डिविंटर लोगों की मदद करने के लिए वहाँ गए। जहाज का कप्तान मैंडले आया, डिविंटर तो थे नहीं, चुनाचे मुझसे मुलाकात की। वो एक अहम खबर लाया था, पुरिसरार खबर। एक आदमी को जब समंदर में ये देखने भेजा गया कि जहाज़ में कोई सुराख तो नहीं हुआ, तो नीचे उसने एक कश्ती पानी में डूबी देखी। वो रिबेका की थी और उसके एक कमरे में एक औरत का ढांचा भी मौजूद था। मैक्सिम भी वहाँ आ गया। अगरचे मैं खौफजदा थी मगर मुझ में ताकत भी आ चुकी थी। इस वक्त मैक्सिम को मेरी ज़रूरत थी। मैक्सिम परेशान था। उसने बताया कि रबैका की किश्ती मिल चुकी है और इसमें रबैका की लाश भी मौजूद है, वो लाश जिसे मैंने कत्ल किया, उसे गोली मारकर ख़त्म कर दिया। मेरी अजीब हालत थी, वो मुझे प्यार कर रहा था मगर मैं अपने हवास में ना थी। वो ज़हनी तौर पर परेशान था और मैं फ़ैसला कर चुकी थी कि हर हालत में उसकी मदद करूँगी। कत्ल के बारे में हम दोनों के अलावा कोई ना जानता था। मैं अब तक समझती रही कि वो रबैका से शदीद मोहब्बत करता है, मगर उसने बताया कि वो उससे शदीद नफ़रत करता था। वो तो नफ़रत के काबिल थी। शादी से पहले उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी जन्नत बना देगी, मगर उसने ज़िंदगी जहन्नुम बना दी। ना जाने कितने आदमियों से उसकी दोस्ती थी, फावेल उनमें से एक था। और फिर उसने नाकाबले माफ़ी बात कही। मैक्स, अगर तुम्हारा बच्चा होगा तो तुम कैसे कह सकते हो वो तुम्हारा ही होगा। ये कहकर वो देर तक हंसती रही थी। उस वक्त मेरी ख्वाहिश थी कि उसे ख़त्म कर दूँ। क्या कोई औरत इतनी जालिम हो सकती थी? हर बात पर तानेबाजी। और जब मैंने उसे गोली मारी, उस वक्त भी वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, तंजिया मुस्कुराहट। शायद उसे इल्म था कि मैं हार चुका हूँ। मैंने एक गुमनाम औरत की लाश को रबैका का नाम दे दिया। ये बातें सुनकर मुझे मैक्सिम से हमदर्दी भी हुई और शदीद मोहब्बत का एहसास भी। अब मैक्सिम मेरा था, सिर्फ मेरा। पुलिस उससे तहकीक करना चाहती थी। कश्ती और लाश का मुआयना भी किया जा रहा था। मैक्सिम ने कहा कि हाँ, शायद कश्ती में मिलने वाली लाश रबैका की ही हो और उसने पिछली लाश की शिनाख्त में गलती की हो। मिसिस डैनवर्स इस बात का फ़ायदा उठाना चाहती थी और खुश थी कि शायद मैक्सिम को सज़ा हो जाए। कश्ती जहाँ से तैयार हुई थी, उसके मालिक ने कहा कि उसे जानबूझकर डुबोया गया, वरना जहाँ सुराख किए गए हैं वो हादसे से मुमकिन नहीं। डी विंटर ने हैरानी और परेशानी का इजहार किया कि कश्ती को जानबूझकर डुबोया गया, और ख़ुद भी ख्वाहिश जाहिर की कि इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी हुई और रबैका की मौत को खुदकशी करार दे दिया गया। डी विंटर की खुद एतमादी ने उसे बचा लिया और असल रबैका को दफना दिया गया। जैक फावेल मुझसे मिलने आया। मैक्सिम लंदन गए हुए थे। इधर उधर की बातों के बाद उसने कहा कि उसे इल्म है कि डी विंटर ने मुझे रबैका किस तरह मरी ये बता दिया होगा। उसी वक्त मैक्सिम भी आ गया। फावेल ने कहा कि रबैका उसकी कज़न और मोहब्बत भी थी। उसे इल्म हो गया है कि रबैका की लाश मिल गई है और ख़ुदकशी करार दिया गया है, जबकि डूबने से पहले उसने मुझे ख़त लिखा था। वो मुझसे मिलना चाहती थी। ख़त पढ़ें, कोई ख़ुदकशी करने वाला ऐसा ख़त नहीं लिख सकता। तो आप मुझे हर साल कुछ रकम देने का वादा करें तो बात दब सकती है। मैक्सिम ने रकम देने के बजाय पुलिस को बुला लिया। फावेल ने पुलिस से कहा कि ख़ुदकशी मौत की असल वजह नहीं। डी विंटर ने कहा ये शख्स हमें ब्लैकमेल करना चाहता है। पुलिस ने फावेल से पूछा कि पहले ये ख़त सामने क्यों नहीं लाए। फिर वो पागल शख्स जो किश्ती के करीब रहता था, उसे बुलाया गया। बेन घबराया हुआ था और यही बार बार कह रहा था कि वो पागल खाने नहीं जाएगा, वो किसी को नहीं जानता, उसने कुछ नहीं देखा। फावेल की चाल नाकाम हो चुकी थी। पुलिस ने मिसिस डैनवर्स से पूछा कि रबैका के आखिरी दिन की मसरूफियात के बारे में कुछ इल्म है तो बताए। डायरी से मालूम हुआ कि रबैका ने ख्वातीन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मुलाकात का वक्त लिया था और उससे मिली थी। सब हैरान थे। डॉक्टर बेकर से दूसरे दिन मिलने का फ़ैसला किया गया। मैं देख रही थी कि डी विंटर दोबारा परेशान नज़र आ रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर, डी विंटर, फावेल सब डॉक्टर के पास गए। उसके पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद था। पहले तो उसने कुछ बताने से मना कर दिया, फिर जब इल्म हुआ कि मौत की तहकीकात हो रही हैं तो रिकॉर्ड दिखाने पर रजामंद हो गया। नहीं, कोई मिसिस डी विंटर या रबैका मुझसे इलाज करवाने नहीं आई। दरअसल वो मिसिस डैनवर्स के नाम से आई थी। डॉक्टर को फौरन याद आ गया। हाँ, अब तो बात साफ हो गई कि उन्होंने खुदकशी क्यों की। वो तो बेहद बीमार थी। बाहर से सेहतमंद नज़र आती थी, दर्द भी कम था, मगर कैंसर अपने आखिरी मराहिल में था। इलाज बेसूद था। वो चंद हफ्तों की मेहमान थी। हर कोई परेशान खड़ा था। रबेका को कैंसर था, शदीद बीमार थी। सिर्फ चंद रोज़ ज़िंदगी के बाकी थे, मगर नज़दीक से नज़दीक तरीन शख्स से भी ये बात छुपाए रखी। फॉवेल की अजीब हालत थी। बोला, मैक्स तुम समझ रहे हो तुम जीत चुके हो, मगर ऐसा नहीं। मैं तुमसे अब भी इंतकाम ले सकता हूँ, अगरचे वो मुख्तलिफ शक्ल में होगा। वो चला गया। मैक्सम ने घर फ़ोन किया और मुझे बताया कि सब कुछ ठीक नहीं है, मिसिस डैनवर्स घर छोड़कर जा चुकी है बगैर किसी को कुछ बताए। घर जल्द अज जल्द पहुँचना चाहिए, मुझे एहसास हो रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। हम खाना खाकर फौरन मैंडले की तरफ रवाना हो गए। गाड़ी चलती रही। मैंने ख्वाब में मिसिस डैनवर्स को देखा और खौफ से चीखने लगी। मैक्सिम ने दिलासा दिया। सफ़र जारी रहा। फिर रात की स्याही के दरमियान दूर से चमकदार रोशनियाँ दिखाई दीं। मैं हैरान थी ये कैसी रोशनियाँ हैं। मैक्सिम से पूछा, मगर उसने कोई जवाब ना दिया, गाड़ी चलाता रहा। मैं सोच रही थी कि हम तो मैंडले की सड़क से आगे आ चुके हैं और मैक्सिम पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाए जा रहा है। और फिर मैं जान गई कि वो रोशनियाँ मैंडले की थीं जो आग में मुकम्मल तौर पर जल चुका था। रेबेका बाय डेफनी डुमारिये। तहरीर और पेशकश सैयद इरफान अली .com। सैयद इरफान अली .com।